ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے سیاسی حالات اور وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کیس میں تفصیلی فیصلہ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جہاں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 26 اپریل کو پاکستان کی عدالت نے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کیس میں مختصر فیصلہ سنایا تھا اور ان کے خلاف سزا بھی سنائی گئی تھی، مگر اس کا تفصیلی فیصلہ آج جاری کیا گیا۔ 26 اپریل سے اب تک پاکستان کی سیاست میں سیاسی درجہ حرارت یا پولیٹیکل ٹمپریچر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور آج جب تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے کیا اثرات دور رس یا عنقریب پاکستان کی سیاست پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد، جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی یاور بخاری۔ السلام علیکم جناب۔ یار بخاری صاحب، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ بہرحال، اب جبکہ آج پاکستان کی عدالت کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے عدالت کا مذاق اڑایا تھا، اور آئین کے ایک خاص آرٹیکل کے مطابق اگر کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کا رکن ہو یا حکومت کا رکن ہو اور وہ عدالت کا مذاق اڑائے تو اسے نااہل کم از کم کچھ حد تک اور زیادہ زیادہ 5 سال تک قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اب جبکہ عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے عدالت کا مذاق اڑایا ہے، تو وہ عدالت کے فیصلے کی روح سے اور جس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے عدالت نے، اس کی روح سے وہ نااہل ہو سکتے ہیں یا نااہل ہیں۔ بہرحال، اس بات کو لے کر اپوزیشن جماعتوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے وزیراعظم پاکستان اور حکمران جماعت پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، مگر خود پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اپنے عہدے سے ہرگز مستعفی نہیں ہوں گے۔ بہرحال، اسلام آباد سے ہمارا رابطہ صحیح معنوں میں یا صحیح طریقے سے برقرار نہ ہو سکا، لیکن اب چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب مقصود صدیقی، جن کا تعلق بھی پاکستان سے ہی بنیادی طور پر ہے۔ ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
صدیقی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج جبکہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے توہین عدالت کیس میں، تو اب کیا سمجھا جا رہا ہے کہ آیا وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اپنے عہدے پر برقرار رہ سکیں گے؟
دیکھیں، ابھی آج جیسا آپ نے فرمایا کہ 70 صفحے کا فیصلہ آیا ہے اور اس کو میں نے کوشش کی تھی جلدی دیکھنے کی، لیکن اس میں کافی وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ 26 اپریل کو جو چھوٹا جو فیصلہ آیا تھا، اس سے تو صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ چیز کہ گیلانی صاحب کو وزیر اعظم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پہ بات چھوڑ دی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو اپنی وزیر اعظم کی پوزیشن سے برطرف کیا جائے۔ اور جہاں تک ابھی تک جو جیسے حالات سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گیلانی صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ای پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ اس کو گیلانی صاحب کو برطرف کریں، نہ گیلانی صاحب خود برطرف ہونا چاہتے ہیں۔ اصل میں سب مسئلہ یہ ہے کہ وہ، اور نہ ہی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پر تیار ہیں کہ سوئٹزرلینڈ خط بھیجا جائے، اور جو کہ سارا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یہ मुकदमा अदालत में पेश हुआ था उसकी उसको खोला जाए, और उसके बाद में जो तमाम तफसील सामने आए ताकि जो भी अदालत को या हुकूमत को जो जो उस पर कदम उठाना हो वो उस पर उठा सके। तो मुझे फ़िलहाल ये नहीं लगता कि गैलानी साहब का कोई इरादा इस्तीफ़ा देने का है, बल्कि ये आइंदा दिनों में इंग्लिस्तान आ रहे हैं 5 दिन के दौरे के सिलसिले में, तो ऐसा ज़ाहिर होता है कि उनका जो अपना जो आम काम है और जो उनके अपने प्रोग्राम हैं उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, और उन्होंने एक बार फिर वही वही किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से उसकी कोई परवाह नहीं की है। और इसमें जो सबसे जो 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 सोचने वाली बात जो सामने आई वो ये है कि इस सारे मामलात में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया, यानी पार्लियामेंट में एक ने एक फ़ैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, और ये कि एक तरह का टकराव दोनों में, हालांकि आइन के हिसाब से तो कोई टकराव का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जो है सबसे यानी उज्मा सबसे ऊंची अदालत है, जो उसका फैसला है वो तो हुकूमत को पार्लियामेंट सबको मानना पड़ता, लेकिन ये चूंकि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उनको ये तो तौहीन अदालत का में जो जो जजों का जो फैसला था वो तो सबको मालूम था इससे पहले कि जो फैसला 26 अप्रैल से ही पहले मालूम था। तो अब मैं ये समझता हूँ
सिद्दीकी साहब,
कि फ़िलहाल ना ही पीपल्स पार्टी का ना ही गिलानी साहब का कोई इरादा है कि वो अपने कि वो अब वज़ीर आज़म की पोजीशन से वो इस्तीफ़ा देंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि
सिद्दीकी साहब मैं आपकी खिदमत
वो
में फिर हाजिर
हालात वैसे ही
हूंगा।
रहेंगे जिसको कहते हैं इंग्लिश में एवरीथिंग वर्किंग एज़ यूजुअल। तो
जी सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर साहफी यावर बुखारी। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी क्या कहना चाहेंगे बुखारी साहब, आज ही जबकि तफसीली फैसला तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ आ चुका है, तो अब सियासी दर्ज हरारत कहाँ पहुँचा और किस हद तक ऊपर जा रहा है?
जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की ये जमहूरियत के जो फेजेज हैं, डिफरेंट फेजेज पाकिस्तान में जमहूरियत के आए, उन डिफरेंट फेजेस में हुआ ये कि जमहूरियत पे कभी आमिर आमिर आमिरों ने कब्ज़ा किया, कभी जमहूरियत जो है वो अपनी गलतियों के साथ उसकी बसात लपेट दी गई। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। एक पहला फेज़ आता है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का फेज़ है, उनको एक आमिर ने रिप्लेस कर दिया और वो उनका दौर चला गया। दूसरा दौर आता है 90s का, जिसमें 4 जमहूरी हुकूमतों की बसात लपेटी गई और जिसमें दोनों बड़ी पार्टियों की दो दो हुकूमतें शामिल हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, 2 दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ये वज़ीर आज़म बने, मगर दोनों को दोनों मरतबा जो उनको बारियां मिली उनमें वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना कर सके। इसके बाद एक लंबा पीरियड फिर आ गया आमरीत का। आमरीत के बाद का एक दौर जो अब जो जमहूरियत बहाल हुई है, ये जमहूरियत बहाल हुई है मिसाक़े जमहूरियत जो के लंदन में पाकिस्तान की तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के साइन किया था। इस मिसाक़े जमहूरियत के बाद जो जमहूरी हुकूमत कायम हुई है, उस मिसाक़े जमहूरियत में ये बात तय की गई थी कि जो पार्टी अवाम का मैंडेट हासिल करेगी उस मैंडेट का एहतराम किया जाएगा।
जी
ये मैं इस फैसले के ऊपर मैं आऊँगा इसकी थोड़ी सी तमहीद के साथ के, ताकि सुनने वाले को समझ लग सके कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो उस मिसाक़े जमहूरियत के बाद ये जो एक NRO तैयार हुआ जो कि जमहूरी क़ुव्वतों सियासी क़ुव्वतों और जिसको वो डिक्टेटर कहते थे उस वक्त के सदर जो हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके माबैन एक ये तय हुआ कि जितने जमहूरी और सियासी क़ुव्वतें हैं उन क़ुव्वतों को वापस वतन आने दिया जाए, और जो रहनुमा जो गए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक NRO करके गए थे और उनको भी सज़ा हुई थी अदालतों से, और वो उनको उस सज़ा को उस वक्त के जो सदर थे जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जेक्टिव थे और उस वक्त सदर थे रफीक तारड़, उन्होंने एक NRO जारी किया था जिसके तहत इनके साथ मुआहदा हुआ कि ये 10 साल के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और मुल्क में किसी किस्म की सियासी ये सरगर्मी नहीं करेंगे, तो वो 10 साल के लिए जिला वतन कर दिए गए थे
जी, मगर यार बखारी साहब,
और उस 10 साल का टेन्योर पूरा होने से कुछ दिन पहले ही, कुछ माह पहले ही जो है ना, फिर वो आए इधर वापस और एक NRO के तहत ये सारी कुव्वतें आई यहाँ पर और इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब पहली बात यह है कि इस NRO के तहत तमाम के जो पिछले गुज़श्ता जराइम थे,
लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आज तफ़सीली फैसला आने के बाद,
और इनको बुखारी साहब में
आज मेरा सवाल आपसे ये कि इस वक्त का सियासी दर्जा हरारत क्या है, वहाँ क्या हो रहा है? जाहिर है कि मैं आप और हमारे नाज़रीन आपसे जल्द इसका जवाब चाहेंगे।
जी बिल्कुल जी, मैं इधर ही आ रहा हूँ कि अब जो है उस NRO के बाद जब इन्होंने इलेक्शनों में हिस्सा ले लिया और ये सारा कुछ हो गया, फिर एक केस आ गया जी NRO केस के, NRO जो है ये नाजायज़ है। NRO के बारे में जब ये इसको नाजायज़ करार देकर और इसको इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर भेजा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में हुकूमत ने भी इसको NRO को जो है ना इसकी डिफेंड नहीं किया और अपोजिशन ने भी डिफेंड नहीं किया, जिस पर उन्होंने अदालत ने फिर फैसला दिया, क्योंकि ये आज के फैसले की बुनियाद ये NRO केस था। NRO केस में अदालत ने फैसला दिया कि वज़ीर आज़म को हुक्म दिया कि आप जो है ये NRO नॉल एंड वाइड करार दे दिया गया है, आप जो है ये तमाम केसेस जिन जिन लोगों के खिलाफ केसेस थे वो केसेस खोल दिए जाएं। अब एक नई डिबेट पैदा हो गई कि सदर मुमलिकत के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और अंदरून मुल्क भी हैं और बैरून मुल्क भी जो है वो स्विस अदालतों में उनके खिलाफ केस था, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उस हवाले से। तो वज़ीर आज़म ने ये स्टांस लिया कि जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी, उनको ये आइनी तौर पर एक तहफ़ हासिल है कि जो भी सरबराह मुमलिकत हो उसके खिलाफ किसी भी अदालत में या किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में केस नहीं खोला जा सकता, और इसके लिए वो जुनेवा कन्वेंशन का भी हवाला देते रहे। लेकिन ये केस जब अदालतों में आगे बढ़ा और अदालतों ने फैसला दे दिया कि नहीं आप इसको इसके ऊपर जो है ना आप अमल दरामद करें और लेटर भेजें स्विस हुकूमत को, तो फिर एक तसादम किसी सूरत हाल पैदा हुई जिसका नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी जो ज्यूरी थी, जो बेंच था, उसने कन्विक्ट करार दे दिया और कहा कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए और आपने आपको ये सज़ा दी जाती है, और वो सज़ा जो है वो एक बड़े अलामती किस्म की सज़ा थी। और उस जो फैसला आज अब जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला जारी किया है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर ये नहीं लिखा है कि वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं और उनको फौरी तौर पर जो है ये अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। इसमें भी ये कहा गया कि आइन के आर्टिकल 63 की क्लास 1G के तहत असरात जो हैं वो उन वो मुरतब हो सकते हैं। तो आइन की 63 आर्टिकल जो है वो उसकी 1G क्लास जो है उसमें ये है कि किसी भी अदालत से
जी बुखारी साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी
खिदमत, कोई भी शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता।
बुखारी साहब मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में,
रोशनी की रूह में ये जो है ना ये
बहुत शुक्रिया आपका
आएगा स्पीकर कौमी असम्बली के पास,
क्योंकि जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची से प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जनाब।
प्रोफेसर साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों और दीगर जो आइनी माहिरीन हैं कि सदर ममलिकत को आइनी तहफ़ हासिल है आइन के मुताबिक, जब आइन के मुताबिक उन्हें तहफ़ हासिल है जब तक वो अहदे सदारत पर हैं, तो अदालत का ये कहना है कि NRO फैसले पर अमल दरामद न करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदालत का तमस्खुर या मजाक उड़ाया है, कहाँ तक अक्ल में या समझ में आने वाली बात है?
देखें, पहले तो मैं आपके इस सवाल का मुख्तसर जवाब दे दूं कि अगर किसी को इस्तिस्ना हासिल है तो वो इस्तिस्ना जाकर अदालत में तलब करे, और जब वो इस्तिस्ना अदालत में जाकर तलब करेगा तो फिर ये बात जेरे बहस आएगी कि वजीर आजम को, सदर पाकिस्तान को ये इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस अभी वजीर आजम गिलानी की नाअहली से मुतालिक और अदालती अहकाम की तौहीन से मुतालिक होती रही है, उसमें वकला की जानिब से भी और अदलिया की जानिब से भी ये नुक्ता नजर सामने आता रहा है कि जब तक के सदर ममलिकत खुद इस्तिस्ना तलब नहीं करते हैं उस वक्त तक उनका इस्तिस्ना मुबहम है और उसकी वजाहत नहीं होती। जब तक ये वजाहत नहीं होती आइन की तशरी और ताबीर जो है वो अदलिया का काम है
जी।
जब तक इसकी ताबीर और तशरी नहीं हो जाती है उस वक्त तक ये एक मफरूजा है कि सदर ममलिकत को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है या नहीं हासिल है। जहाँ तक अदलिया के हालिया फैसले का ताल्लुक है और आज जो तफसीली फैसला आया है उसकी रोशनी में देखिए अदालत का मंशा और अदालती कार्रवाई की पूरी प्रोसीडिंग से ये बात बिल्कुल असर मिनशम्स हो चुकी है कि जिस तरह से अदालत ने स्विस हुकूमत को ये खत लिखने का हुक्म दिया था उस खत को नहीं लिखा गया और ये खत ना लिख कर जो है वो वजीर आजम ने अदालती हुक्म की तौहीन की है। देखिए ये वो कानूनी मुशगाफियां हैं जो अदालत के अंदर भी और सियासतदानों के अंदर भी जेर बहस हैं लेकिन आवाम का मिजाज और पूरी पाकिस्तान की सियासी माहौल और उसकी फजा जो बात कह रही है वो ये कह रही है कि वजीर आजम ने सदर ममलिकत के जराइम को छुपाने के लिए और ये वाजे तौर पर ये बात कहते रहे हैं वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब कि वो किसी कीमत पर खत नहीं लिखेंगे। अगर भाई बात ये है कि उन्होंने कोई ऐसी करप्शन बदगुमानी नहीं की है तो आपको खत लिखने पर क्या एतराज है, आप खत लिख दीजिए और उसके बाद फिर अदालत का सामना कीजिए और जो जवाब वहां से आ जाए उसको देखा जाए।
लेकिन
सिद्दीकी साहब बात ये है कि जिसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
सिद्दीकी साहब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा सिद्दीकी साहब
उसकी दाढ़ी में तिनका क्या बांस है इसलिए वो हकायक का सामना करने से कतरा रहा है।
जी मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब जैसा कि आपने कहा कि खत लिखने में क्या मुजायका है, दूसरी तरफ खुद हुकूमत या हुकूमती अहदेदारों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों का ये कहना है कि सदर ममलिकत वफाक की अलामत होता है और हम दूसरे मुल्क में किसी भी जज या अटॉर्नी जनरल या किसी भी आइनी अहदेदार को अपने सदर के ख़िलाफ़ या अपने सदर के सिलसिले में ख़त लिख कर अपने वफाक की एक तरह से अहानत कर के मुर्तकिब होंगे, तो उनकी ये बात कितनी वजन रखती है और कितनी संगीन है?
इसमें कोई वजन नहीं है, ये बिल्कुल खोखली बात है कि अगर आपके सदर ममलिकत की इतनी ही अजमत और तौकीर है कि आप जो है वो उसे किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं कर सकते तो जिस तरह से अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ आपकी सॉवरेंटी की और आपकी आज़ादी की और आपकी सलामती की जिस बेदरेख तरीके से तौहीन और तजलील कर रहा है उस वक्त तो आपको ये सारी चीज़ें अखलाकी बातें और मुल्क की आज़ादी सलामती सॉवरेंटी ये सब आपको याद नहीं आती हैं। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब सदर ममलिकत के बारे में करप्शन जैसे घिनौने इल्ज़ाम से मुतालिक सवाल उठाया जाता है तो आप जो है वो सदर ममलिकत की वकार को आड़ लेकर उसके करप्शन के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए कि चाहे ये जो हुक्मरान टोला है एक बात तो ये बहुत अच्छी तरह से वाजे रहनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है ये हुकूमती सेटअप जो है वो अमरीका के उसी पॉलिसी का और उसी उसकी जो नामजद क्यादत है उसी का तसलसल है जो मुशर्रफ के दौर से चला आ रहा है। ये जो एनआरओ करवाया गया इस एनआरओ के पसे पर्दा भी जो सबसे बड़ी कुव्वत मुहरका थी वो अमेरिका थी। लिहाजा ये है कि इस वक्त भी जो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सूरत हाल है उस सूरत हाल में अमरीकन मुदाखलत और अमरीका की जो यहाँ पर दिलचस्पी है वो सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा इस वक्त मसला पाकिस्तान की सॉवरेंटी और सालमियत का ये है कि पाकिस्तान अगर अपनी आज़ादी और अपनी सलामती और इज्जत और आबरू को बरकरार चाहता है तो उसे अमेरिका के इत्तेहाद से अमेरिका की गुलामी से बाहर आना होगा।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में प्रोफेसर साहब। चलते हैं लंदन स्टूडियो। सिद्दीकी साहब आप देखें कि जो आज अदालती फैसला आया है उसमें कहा गया है कि चूंकि आइन की आर्टिकल फलां में तमस्खुर या मजाक उड़ाने वाला रुकने पार्लियामेंट या कोई अहदेदार नाअहल हो जाता है तो इस बात का इल्म वकील को भी है वजीर आजम पाकिस्तान के और उन्होंने इस सिलसिले में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यानी ये किनाया इस बात की तरफ इशारा है कि गोया वजीर आजम पाकिस्तान नाअहल है अपने अहदे के लिए। तो क्या मुजायका था अदालत को ये कहने में कि आईन के इस आर्टिकल के तहत चूंकि उन्होंने अदलिया की तौहीन की, अदालत का मजाक उड़ाया है, वो नाअहल है। ये वाशिगाफ लफ्जों में या सराहत के साथ अदालत ने क्यों ना लिखा और क्यों ना फैसला सुनाया?
जी हाँ, ये सोचने की बात है, बल्कि मैं जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे ताज्जुब हुआ था कि जो 26 अप्रैल के फैसले में भी उन्होंने ये बात छोड़ दी थी कि इनके इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि किस के अदालत का को मुकम्मल अख्तियार है कि वो इनके के किस जब जब के ये जब अगर जुर्म और ये इल्ज़ाम जो है वो साबित हो गया तो उसको वो हुक्म दें कि वो शख्स अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। लेकिन बजाय इसके ये कहने
जी
के, ये कहा क्या कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और पाकिस्तान के कि वो इस सिलसिले में जो फैसला करें। मकसद मुझे ये लगता है कि इसमें बड़ा मुश्किल है ये बात को समझना कि इसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला नहीं किया बल्कि इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसा आपको इल्म है अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो मैं खुद बहुत हैरत है मुझे इस बात की, बल्कि पाकिस्तान में तो सब लोगों का ख्याल यही था कि हर हालत में ये बजाय इसके कि वो जो एक तरह का छोटा सा ड्रामा ही कही है उसको कि जब 26 अप्रैल को इनको एक चंद सेकंड के लिए हिरासत में ले लिया गया था जब वो ये अदालत में थे, उसके बाद वो उस इस तरह से मतलब उनकी जो सज़ा थी वो उनको वहीं पे दे दी गई थी, और उसके बाद वो बरी हो गए, यानी उनको उन्होंने अपनी सज़ा काट ली और उसके बाद ये हुआ कि वो अभी भी अपने उसी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं। और वो जो उस सिलसिले में उस उनके उनको हटाने के बारे में कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का वाज़ तौर पर कोई बात नहीं कही है। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है, और इसको समझ से बिल्कुल इन्हें समझ से बाहर है कि इस तरह क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं फैसला किया कि इनको उस ओहदे से हटाया जाए और दूसरे
जी
यानी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बात ना छोड़ी जाए। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुझे नहीं लगता कि गिलानी साहब का कोई इरादा ही है कि अपने वज़ीर आज़म के
जी
ओहदे को छोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने तो प्रोग्राम बना लिया इंग्लिस्तान का दौरा करने का,
जी
और जो है हालात वही वही रहेंगे जैसे पहले थे। अब ये देखें इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या उसका क्या रिएक्शन होता है,
जी
लेकिन
मैं फिर हाजिर हूँगा।
मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ यही कह सकता हूँ
जी
कि ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है
जी
कि अदालत ने खुद क्यों नहीं इस सिलसिले में
बहुत शुक्रिया आपका।
मैं अपना फैसला दिया।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। बुखारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप अपोजिशन जमातों की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफ़े का मुतालबा और दबाव बढ़ता जाएगा?
नहीं, मुतालबा तो उन्होंने कर दिया, दबाव भी बढ़ा रहे हैं। ये बात तो जाहिर है कि अपोजिशन जो है या सियासी जमातें, हर सियासी जमात अपने मफादात के तहत सियासी बयानात देती हैं और सारा निज़ाम जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं। दर हकीकत अगर मैं थोड़ा सा आप वक्त देंगे मैं अपनी बात को बेटर तरीके से समझा सकूंगा। वो ये कि ये जो फैसला आया है ये इसमें भी अबहाम है। अच्छा, इन अबहाम को दूर करने के लिए अब एक डिबेट और शुरू होने वाली है जिससे ये होगा कि क्या जो आईन पाकिस्तान है उसमें ये वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर जो मुकन्ना है, जो कानून साज अदारा है, वो सॉवरन है। वो उसमें और किसी अदारे को सॉवरन करार नहीं दिया गया, मुकन्ना को सॉवरन करार दिया गया। एक बात, अब ये देखना है कि क्या मुकन्ना ने जो कानून बनाए हैं, ये अजीब एक सूरत हाल है पाकिस्तान में कि कानून मुकन्ना बनाती है और उस कानून की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मुकन्ना से सॉवरन है तो फिर आइन में लिखना था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सॉवरन होगी और उसका फैसला जो है वो तस्लीम किया जाएगा। अब मैं एक मंजर आपके सामने पेश करता हूँ, वो ये कि अब अदलिया ने ये फैसला दे दिया है कि वजीर आजम जो है उन्होंने कानून का तमस्खर उड़ाया है। ठीक है, ओके, आपने ये तौहीन अदालत का ये आपने एक फैसला दे दिया। अब ये फैसला, इसके ऊपर रेफरेंस कौन दायर करेगा? सुप्रीम स्पीकर कौमी असम्बली के पास रेफरेंस कौन दायर करेगा? क्या जो मुकन्ना है उसकी अक्सरियत ने अभी पिछले दिनों करारदाद पास नहीं की है जिसमें वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया गया है? क्या जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो हुक्मरान जमात से ताल्लुक नहीं रखती हैं? वो किस तरीके से वो भेजेंगी रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेट जो किया है वो वजीर आजम ने किया है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किस तरीके से अपने बॉस के खिलाफ फैसला देगा, और ये जो जज बहाल हुए हैं ये जज भी वजीर आजम के हुक्म के साथ बहाल हुए हैं, वजीर आजम के एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल हुए थे इन जजों को साबिक सदर ने। ये एक अजीब एक कम्प्लेक्स सिचुएशन पाकिस्तान में है। मैं गैर जानिबदार रहते हुए मैं अपनी बात को सम अप करना चाहूँगा कि ये अब एक नई डिबेट शुरू होगी। वजीर आजम, मैं आपको बताऊँ कि वजीर आजम के पास अभी भी अपील का हक है। अब इसमें एक और लकुना मैं बताऊँ कि वो ये हुआ कि हमेशा पाकिस्तान में कोई मुजरिम होता है जो जुर्म करता है उसको निचली अदालत से सजा मिलती है, वो बड़ी अदालत में जाता है, उससे बड़ी अदालत में, इस तरीके से करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर उसका जुर्म साबित होता है तो वो उस जुर्म के ऊपर वो फिर वो सजा होती है, और फिर वो उस सजा के खिलाफ अपील करता है, और उसको अपील का राइट आइन में दिया गया, कानून में दिया गया है, और ये वाहिद ये फैसला आया है जिसमें अपील का हक देने से पहले ही सजा पर अमल दरामद करवा दिया गया। अब ये भी देखना है कानूनदानों को, और ये भी सारा कुछ देखना है कि भी जब सजा पर अमल दरामद करवा दिया गया है अब अपील का हक बनता है या नहीं बनता है। अब किस कौन सी अपील, सजा तो आपने दे दी है सजा, और उससे काट भी लिए सजा, तो अब वो अपील कहाँ करेगा अब। लेकिन उनका एक हुकूमत का ये है कि जी हम सजा तफसीली फैसले के बाद हम अपील करेंगे। अब अपील के लिए चीफ जस्टिस ने तस्लीम कर लिया है कि जी हम जो अपील के लिए ये होता है कि जिन जजों ने फैसला सुनाया होता
लेकिन
है
बुखारी साहब
बाकी जजों पर
बुखारी साहब
बनाया जाता है।
बुखारी साहब यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि जो सजा बुखारी साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सजा याफ्ता होता है चाहे 32 सेकंड की सजा क्यों ना उसने पाली हो तो आइन के मुताबिक या अखलाकी तौर पर उसे अपने ओहदे पर रहने का हक नहीं है। तो वज़ीर आज़म तो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, तो अब अपोजिशन के इस मुतालबे में आपको दम नज़र नहीं आता कि अब ये सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, इनके दामन पर दाग लग चुका है, तो इनको अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए।
अली अब्बास साहब
जी,
अली अब्बास साहब, पाकिस्तान में अखलाकियात का नाम कहीं नहीं है। पाकिस्तान में दूसरे ममालिक में किसी एक हकूमती ओहदेदार पर इल्ज़ाम क्या एक उंगली उठती है तो वो इस्तीफ़ा दे के अपने आप को अदालत में ले जाता है। पाकिस्तान में वह इतनी बड़ी दहशत गर्दियाँ हो गई, इतने बड़े धमाके हुए, सैकड़ों लोग बेगुनाह मारे गए, ना किसी वजीर ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी थानेदार ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी पुलिस के अफसर ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी आईजी ने इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान में रेलवे के इतने बड़े बड़े हादसे हुए, कभी किसी ने इस्तीफा, आज तक किसी को अखलाकियात याद नहीं थी। पाकिस्तान में अखलाकियात नहीं है। यहाँ पर तो जो टीम वर्ल्ड कप हार के आ जाती है उसका कप्तान इस्तीफ़ा नहीं देता, तो ये कैसे इस्तीफ़ा देंगे ये वजीर आजम। हाँ, वजीर आजम के बारे में मैं ये जानता हूँ कि अगर अपील वो करेंगे अदालत में, अगर उन्हें राइट ऑफ अपील हुआ, उन्होंने अपील की, नौ जज जो हैं वो चीफ जस्टिस ने कहा हम लार्जर बेंच बनाएंगे, उसके लिए 3 जजों ने जो है वो कह दिया हम नहीं करेंगे, ये 7 जज उस जूरी में बेंच में नहीं बैठेंगे, 9 रुकनी बेंच में ये नहीं बैठेंगे, बाकी बचते हैं 6 जज, 16 जज हैं इस वक्त जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, 7 जजों ने ये फैसला दे दिया, बाकी 9 बचते हैं, 9 में से 3 ने कहा हम अपील में नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे कोई पर्सनल मामलात हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब 3 नए जज एडहॉक जजेस उनको हुकूमत ने अपॉइंट करना है। आप देखिए कैसी सिचुएशन है, कैसा ये है एक एक सिनेरियो, एक मंजर कैसा बन चुका हुआ है कि 3 जज अब हुकूमत ने देने हैं कि ये जज जो हैं ये जाएं और 9 रुकनी बेंच में बैठ
जी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया
जो है उसके खिलाफ फैसला सुने, वो हुकूमत भेजेगी और वो जो एक तरीकाकार बनाया हुआ है जुडिशियल कमीशन वो करेगा। ये कैसी सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी हुई है। ये मैं इस
सारी इजाजत दीजिए मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर
होऊंगा कि पाकिस्तान में ये जमहूरी दौर जो आया है ये एक एवोल्यूशनरी पीरियड है, एवोल्यूशन हो रही है, इर्तकाई अमल है। इस इर्तकाई अमल में जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इसमें यह होगा कि डिबेट्स होंगी, इसमें सारा सारे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाएंगे। ये कैसी आप बात, मैं एक एक बात आखिरी में कहता चलूं कि एक जिसको आप ये मत देखें कि कौन बैठा है, सदर जरदारी है या कौन है, एक सदर मुमलकत का ओहदा है
जी,
सदर मुमलकत के ओहदे का एक तकद्दस होता है, वो ए बी सी कोई भी बैठा हुआ हो। सदर आसिफ जरदारी को 12 साल जेल में रखा गया, ये मुकदमा NRO का या वो स्विस अदालतों का मुकदमा आज का नहीं है, ये 20 साल पुराना मुकदमा है जिस पे आज की अदालत उन्हीं की हुकूमत में वो ये कह रही है कि जी उनके खिलाफ आप लिखें, जबकि आईन का आर्टिकल 248 आर्टिकल 248 वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि जो सरबराह मुमलकत है उसके खिलाफ कहीं पर कोई मुकदमा नहीं खोला जा सकता। तो ये मैं ये कहूंगा कि ये एक डिबेट शुरू होगी, इस डिबेट में से जो बाहर निकलेगा फिर हम कोई हतमी फैसला कर सकेंगे। हाँ, जब वजीर आजम की अपील अदालत से मुस्तरद होगी, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर अदालत उज़्मा ने वजीर आजम की अपील को मुस्तरद कर दिया, वजीर आजम उस दिन इस्तीफा दे जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, जब वजीर आजम सजा काट चुके हैं वलो 32 सेकंड की ही सही, तो क्या वो अपील अब दोबारा दायर करेंगे कोर्ट में?
देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया बा साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अदालती मुशगाफियां और कानूनी मुशगाफियां हो रही हैं, इन अदालती और कानूनी मुशगाफियों का बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क में एक क्याउस पैदा किया जाए, और इस पूरे क्याउस को पैदा करने में जितने भी इदारती हैं, जो रियासती इदारे हैं, वो माशाल्लाह अपना भरपूर हिस्सा और अपना भरपूर सवाब हासिल कर रहे हैं। बात बड़ी सीधी सी है और साफ सी है कि अगर कोई शख्स जुर्म के दायरे में आ जाता है, उसके ऊपर जुर्म लगा दिया जाता है, तो पाकिस्तान का यही आईन, पाकिस्तान का यही दस्तूर जो है उसे नाअहल करार दे देता है। देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ बात अखलाकियात की हुई और बुनियादी तौर पर अखलाकियात से ज्यादा कानून की है। देखिए, कानून में भी जो है, कानून के लिहाज से भी जो है, जिस वक्त अदलिया ने उनको ये फैसला सुनाया, उनको 30 सेकंड की सजा हुई। अब एक सजा याफ्ता शख्स किस तरह से जो है वो वजीर आजम के मनसब पर फायज रह सकता है? पूरी कौम में एक कंसेंसस है इस वक्त कि जो है वजीर आजम गिलानी को जो है वो अपने मनसब से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। बात तो ये है कि इस वक्त जो है जिन कुवतों की बुनियाद के ऊपर ये पूरा एक टोला जो है वो मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो अपनी हददर्मी का मुजाहरा कर रहा है। अब इस हददर्मी के नतीजे में देखिए मुल्क का जो सिनेरियो बनने जा रहा है, वो सिनेरियो जो है वो बड़ा भयानक होगा। अब ये समझ ही रहे थे कि अदलिया जो है वो कोई ऐसा फैसला करेगी जिसके नतीजे में ये सियासी शहीद बन जाएंगे, उसके रास्ते जो है वो मफकूत हो गए हैं। अब अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर भी है, अपोजिशन जो पार्लियामेंट के बाहर भी है, उसने एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज कर दिया है, और ये
तो प्रोफेसर साहब
जो है वो आगे बढ़ेगा।
तो प्रोफेसर साहब, क्या ये माना जाए, प्रोफेसर साहब तो क्या ये माना जाए कि अदालत का फैसला आईनी हैसियत से ज्यादा सियासी नोयत का है?
सरकार को और आवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं, और अवाम को नजरअंदाज करने की इंतहा ये हो चुकी है कि जिस अदलिया के लिए 12 मई को लोगों ने बेशुमार कुर्बानियां दी थी, आज तक चीफ जस्टिस ने उसका नोटिस नहीं लिया। एक इंडिविजुअल के कत्ल पे तो वो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन 50-54 अफराद जो है वो मारे जाते हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से अदलिया जो है वो फैसलों में ताखीर कर रही है, उसमें इबहाम की जो कैफियत नजर आ रही है, उससे जो है वो मुल्क के अंदर जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातें हैं, उनका भी जो है वो एतमाद शेख हो रहा है कि ये किस तरह का निज़ाम जो है वो अदलिया के हवाले से चल रहा है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा। मखसूस सिद्दीकी साहब, लंदन में बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक तरह से आईनी और सियासी तसादुम की फिजा जन्म ले रही है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो मुमकिन है कि फौज भी हरकत में आ जाए और शायद टेक ओवर तक का इकदाम कर ले। तो क्या इस तरह के जो खदशात हैं, इनको कहीं से दुरुस्त माना जा सकता है आपके ख्याल में?
नहीं, जो पहली बात आपने कही वो आइनी और सियासी थी, उसमें तो तसादम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ तक फौज का टेक ओवर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये होने वाला है। लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है कि अभी आपने सुना होगा कि इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उन्होंने इनको बाकायदा तौर पर अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर अदलिया का फैसला मुकम्मल तौर पर नहीं माना गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो 1 करोड़ जो नौजवानों को वो लेके इस्लामाबाद में आके کے وہ وہاں پہ وہ ڈیمونسٹریشن کریں گے, اور یہ ممکن ہے کہ یہ ایسا ہو, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ کے فیصلے پہ اس میں کوئی زیادہ آگے بات بڑھے گی. بے شک گیلانی صاحب اس پہ اپیل کریں گے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور وہ تو سب کو معلوم ہے کہ اپیل کے بعد بھی دیکھیے اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ہٹائے گی, ان کو اگر ہٹا بھی دیتی ہے اور کوئی دوسرا وزیر اعظم آ جاتا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سوئس اتھارٹیز کو وہ خط بھیجیں گے جس کا حکم عدلیہ نے دیا؟ میرے خیال میں وہ خط نہیں جائے گا. تو جب وہ نہیں ہوگا تو یہ معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا جو کہ گیلانی صاحب کے زمانے میں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ اب کسی قسم کا یعنی کہ اس طرح کا ہنگامہ کہنا چاہیے یا مظاہرہ یا لوگوں کا ایک بہت ہی بڑی تعداد میں خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو پاکستان کا ہے, میرے خیال میں وہ اس میں کچھ بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لے گا اور وہ ڈیمانڈ کرے گا حکومت سے, عدلیہ سے یا فوج سے یا کسی سے کہ بھئی یہ اب یہ جو حالات ہیں یہ زیادہ دن تک نہیں چل سکتے, کیونکہ یہ تو صرف ایک چھوٹی سی بات ہے, یعنی جس کا اتنی بڑی بات بنائی گئی. جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ تو بہت زیادہ سنگین ہیں. مطلب یہ کہ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں جو شہری جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں ڈرون اٹیک سے. جیسا آپ شروع میں آپ نے سنا تھا کہ بلکہ پروفیسر صاحب نے کہا تھا صحیح طور پہ کہ یہ امریکہ کی شکست جو افغانستان میں ہو رہی ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ پاکستانیوں سے وہ نکالا جا رہا ہے. جو یہ جو بلیک واٹر اور یہ کہ جو گروپ کے لوگ ہیں یہ اندھادھن وہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے پاکستان میں, اور چونکہ پاکستانی وہ اور ہلری کلنٹن صاحبہ جو ہیں وہ مطالبہ یہ کر رہی ہیں کہ پاکستانی فوجی اور زیادہ ان کے وار آف ٹیرر میں حصہ لیں. اور جب چونکہ جیسا میں نے کہا کہ چونکہ افغانستان میں امریکہ کو مکمل طور پہ شکست ہو چکی ہے, اب وہ جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ سارا کچھ وہاں سے اسپل اوور کر کے وہ تو پاکستان میں آ ہی گیا ہے, اور پاکستان میں اور زیادہ ہے تو پاکستان میں اور زیادہ حالات خراب ہوں. تو آپ کے سوال کا جواب میں یہ کہوں گا کہ ممکن یہ ہے کہ ایک تو امریکہ جو کچھ زیادہ تر ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے پیچھے امریکہ
جی
میرے حساب سے اسرائیل اور ہندوستان شامل ہیں.
اور جی بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں
لوگوں
اگر وقت رہا تو.
صدیق صاحب, لوگوں کو اس بات کا پورا علم ہے. اب اگر کہیں صحیح طور پہ عدلیہ کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھاری تعداد میں نوجوان طبقہ سڑکوں پہ آئے گا اور مظاہرہ کرے گا, اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا.
جی میں پھر حاضر ہوں گا اگر وقت رہا تو. بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ عدلیہ نے 32 سیکنڈ کی سزا دے کر ایک طرح سے پاکستان کے بعض حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ سیاسی, جیسا کہ پروفیسر شکیل صدیقی صاحب نے کہا کہ سیاسی شہید نہ بننے دیا وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو, اور دوسری طرف اپوزیشن کی مقبولیت یا اس کو حاشیے پہ بھی جانے سے بچا لیا, تو کیا عدلیہ نے اپنے اس فیصلے سے بیلنس رکھنے کی کوشش کیا؟
میں اس سارے معاملے میں مثبت منظر نامہ آگے دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں, عمران خان کی ابھی بات ہوئی, صدیقی صاحبان نے عمران خان کی بات کی. عمران خان نے خود کہا ہے, بیان دیا ہے کہ اپیل کا فیصلہ آنے تک ہم دیکھیں گے. اپیل کا فیصلہ اگر وزیر اعظم کے خلاف آیا اور پھر وزیر اعظم اپنے عہدے سے چمٹے رہے تو پھر ہم ایک سونامی, عوام کے سونامی سے ان کو ہٹائیں گے, اور یہ جائز بات ہے, یہ صائب بات ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب جہاں تک امریکہ کی بات کی جا رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ نے چونکہ 2014 کا یہ ایک پہلو, یہ میں جو چونکہ ڈسکس ہوا, دونوں صدیقی صاحبان نے بھی یہ ڈسکس کیا ہے, میں بھی تھوڑا سا اس پہ یہ ڈالتا جاؤں کہ اب اس کے پسے پشت جو ہے وہ سازش کیا ہے اس سارے منظر نامے کے, یہ جو ابھی پاکستان میں پیدا ہوا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے 2014 کا کہا کہ شکست کھانے کے بعد وہ اب وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور وہ سیف ایگزٹ چاہ رہا ہے. سیف ایگزٹ اس کو مل نہیں رہا ہے کیونکہ جن جہادی قوتوں کے خلاف وہ یہاں پر اس نے امریکہ نے یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا تھا اور جن ممالک کے خلاف وہ سازش کر کے آیا تھا, اس کو اپنے مقاصد میں مکمل طور پر ناکامی ہو چکی ہے اور امریکہ اس وقت کمزور ہو چکا ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں اس کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا, تو پاکستان کی یہ موجودہ حکومت نے یہ کیا کہ جب سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ آیا तो पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह की भी है, जैसी भी है, गुड गवर्नेंस है या नहीं है, उसने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान की ये 66 साल जो तारीख है इसमें ये पहली हुकूमत है जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई और शमसी एयरबेस खाली करवाया। नेटो सप्लाई को बंद हुए 6 माह हो चले हैं, नेटो सप्लाई बंद है। तो अमेरिका को एक इस हुकूमत के खिलाफ साजिशों में एक आप अमेरिकी जो है अमल दखल वो भी आप ये देख सकते हैं। जहाँ तक हम माजी की हिस्ट्री को देखते हुए एनालाइज करें तो वो ये नज़र आता है कि अमेरिका को ज़्यादातर पाकिस्तान में आमरियत सूट करती है क्योंकि आमरियत के पीछे अवाम नहीं होती है। अब चूँकि इस हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी है अभी तक नेटो सप्लाई बहाल नहीं हो सकी।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नवाजिश। वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है बुखारी साहब, एक अगला साल में प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब से करना चाहूँगा। प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब, रमयान मलिक वज़ीरे दाखला पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरपोल ने शरीफ बरादरान की मनी लॉन्ड्रिंग केस का नोटिस ले लिया है। आज जब तफसीली फैसला वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आया तो इस तरह का बयान वज़ीरे दाखला की तरफ से, क्या शरीफ बरादरान पर दबाव डालने के लिए?
देखिए, ये जो रहमान मलिक साहब हैं, ये रहमान मलिक साहब के बारे में जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी के और सदर ज़रदारी के बहुत ही करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे झूठा आदमी है। तो रहमान मलिक जो एक यहाँ पर मजारी का किरदार अदा कर रहा है, और रहमान मलिक की कोई हैसियत नहीं है, वो एक मजाक है और एक लतीफा है। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को भी और तमाम अपोजिशन जमातों के होश को नाखून लेने चाहिए। देखिए, इस बात के बारे में मुस्तकिल बात ये कही जा रही है कि फौज टेक ओवर नहीं करेगी, फौज के सरबरा भी मुख्तलिफ मौकों पर कहते रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सिक्योरिटी, कोई जमानत जो है वो कौम के पास नहीं है। पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तकरीर से खिताब करते हुए ये बात बहुत वाज तौर पर कही कि इदारे अपने अपने हदूद में लें और रहें और तसादुम से गुरेज करें। उनकी तारीफ से, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इंडिकेशन आ रहे हैं, और जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने भी और बुखारी साहब ने भी ये फरमाया और वजह फरमाया कि अमेरिका को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कभी भी सूट नहीं करती है, आमियत ही सूट करती है। लिहाजा मुझे तो इस बात का भी खदशा है कि ये इस तरह की जो एक मुभम फजा पाकिस्तान में बनाई जा रही है और जिस तरह से इदारों को लड़ाने के लिए नामुकम्मल नाकिस फैसले किए जा रहे हैं, इसके नतीजे में जो है उन कुवतों को जो मुख्तदिर कुवतें कहलाती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कहलाती हैं, उनको ये मौका फराहम किया जा रहा है कि वो जो है वो जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर डिजेल करें और आगे बढ़ें। और जाहिर है कि जब इस्लामाबाद में लाखों लोग निकलेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, तो जाहिर है फिर अजीज हम वतनों वाली तकरीर जो यहाँ पर हर वक्त तैयार रहती थी उसको सुनना हम सब के लिए जो है नागवार सही, लेकिन सुनना पड़ेगा, ये मजबूरी होगी।
बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। प्रोफेसर साहब, वक्त खत्म हो चुका है। हम अपने तमाम मेहमानों और मोजिज नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। नाजरीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त अपने इंतहाई अहम और तकदीर साज दौर से गुजर रहा है, एक आइनी और सियासी तसादुम है। आने वाले दिन ये बताएंगे कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस सिमत और किस रुख को जा रहा है। गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई, नतीजा निकालना आपका काम। मुझे अली अब्बास रिजवी और दीगर साथियों को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।